Hare Krishna. To aaj hamara vishay hai Sanskrit ucharan, uski mahatva aur vyavaharik prayog. Hamare sath aaj Jai Nityananda Das Brahmachari, ye Nandagram Krishi Goraksha Samuday ka Gurukul ke Sanskrit Shikshak hai, aur mere Shisha hote hue bhi is satra mein inse anurodh karta hoon mujhko sanshodhan karna jitne bhi galti aayegi meri bhasha mein. To pahle Jai Nityanand Prabhu humko bataye Sanskrit उच्चारण की क्या महत्व है.
संस्कृत उच्चारण श्रील प्रभुपाद इस समय चाहते थे कि हम हमारे जो भी श्रीमद् भागवत कक्षाएं होती है उसमें या इवन साधारण रूप से जो भी हम संस्कृत पाठ करते हैं उसमें सही रूप से उसका उच्चारण करें. हम पाते ऐसे कई ऐसे उदाहरण है जहाँ श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को गलत उच्चारण के लिए उनका संशोधन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये गलत है, इस प्रकार से उसका उच्चारण नहीं करना है. जिसमें एक ऐसा प्रसंग है श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में आता है जिसमें प्रभुपाद बर्ड्स ऑन ट्रेस इस प्रकार से
Birds on trees. अर्थात वृक्ष पर पक्षियों.
वृक्ष पर पक्षी, लेकिन उसका उच्चारण कुछ बर्ड्स की तरफ करते हैं.
बर्ड्स नहीं बोले, बर्ड्स.
तो यह सुनकर श्रीमान हरिग्रीव प्रभु उस समय जो थे तो उन्हें संशय हुआ कि क्या ये बर्ड्स बोल रहे हैं या बर्ड्स बोल रहे हैं.
बर्ड का मतलब कवि.
बर्ड्स का अर्थ होता है कवि.
कवि हम वृक्षों में हम किसी कवि नहीं देखते, पक्षी देखते, कवि नहीं है.
सो जैसे अपना संशय व्यक्त करते श्रील प्रभुपाद अपने उच्चारण को वे संशोधित करते और कहते कि बर्ड्स है. सो हम श्रील प्रभुपाद के अनुगामी हैं. सो हमारा कर्तव्य कि श्रील प्रभुपाद जो हमारे लिए दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं कि हमें सही उच्चारण करना है, तो यही हमारा कर्तव्य.
तो एक प्रसिद्ध श्लोक है ने, मूर्खो वदति विष्णाय पंडित वदति विष्णवे उभय अपि समं पुण्यं भावग्राही जनार. इसका अर्थ क्या है बताए.
कोई मूर्ख व्यक्ति है जो संस्कृत के विषय में इतना अभिज्ञ नहीं है, जानकारी नहीं रखता है, तो वह जैसे हम ओम गणेशाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम शिवाय नमः, गोविंदाय नमः, इस प्रकार से
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णाय नमः नहीं है. क्या बोलना है
उसका. वहां पर विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार
ऐसा होता है. क्यों ऐसा संस्कृत व्याकरण में वैसे है.
जैसे गुरुवे नमः वैसे ही विष्णवे नमः, इस प्रकार से. लेकिन जो अनभिज्ञ व्यक्ति है या मूर्ख व्यक्ति है वो विष्णाय कहता है, और जो पंडित व्यक्ति है जो इस विषय में जानकारी रखता है वो ओम विष्णवे नमः कहता है. सो यहाँ पे भाव है कि भगवान श्री जनार्दन वे भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं. सो यद्यपि वो जो एक मूर्ख व्यक्ति है उसने गलत कहा है,
यदि भाव से कहते हैं,
भाव से कहे तो भगवान उसका भाव ग्रहण करते हैं,
भाव ग्रहण करते हैं, उच्चारण की गलती ग्रहण नहीं करते. तो
लेकिन सामान्य रूप से हम इसे हम ये समझते हैं कि हम गलती करते रहेंगे, कभी भी हम इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे. तो वो एक आलस्य है, प्रमाद है. तो इस श्लोक के द्वारा इसका समर्थन नहीं होता है कि हम हमेशा मूर्ख बने रहे.
एक और बात है इस विषय में कि हम प्रतिदिन वो सभी मंत्र कहते हैं, जैसे Nama Om Vishnu Padaya, Hare Krishna, Hare Krishna. To yadi hum shuruvat mein bhakti ka shuruvat mein kuch galti karte hain, to wo ek baat hai. Lekin bar bar ek hi galti karna, uska matlab kya hai? Alasya. Jaise aapka naam Jai Nityananda Das hai. To yadi mein Ji Nityananda kehta hoon, aur aap vinamrata se mujhko batate hain ki aapka naam kya hai? Ji Nityananda. Kya naam hai?
Jai Nityananda
kya bolte? To yadi bar bar mein Ji Nityananda kehta hoon aur prayas nahi karta hoon wo bhul ka sanshodhan karna, uska alasya hai aur apaman bhi hai, nahi? Inko yathart maryad, kya bolte, saman nahi dena. To hum jo pratidin hum nama Prabhupada ka pranam mantra kehte, gurvashtak kehte, to pratidin hum kehte, to hame kuch prayas karna chahiye jisse hum achhi tarah kahenge, ucharan theek ho jaye. Aur kuch kehna chahte ucharan ke bare mein, matlab sadharan vishay ke bare mein? To theek hai, hum shuru karenge. Sadharan mantra jo hum pratidin kehte hai, main kahunga bhul karke kahunga, sadharan brahm jaise kahunga, aur kya naam hai, Jai Nityananda Prabhu sangshodhan karenge. To hum sa jaise Jai Nityananda Prabhu kehte hai, actually Jai Nityananda wo to Hindi ucharan hai, Sanskrit mein Jaya Nityananda aise kehna chahiye. Samanyata hum Jai Nityananda kehte hai. To hum sab Srila Prabhupada ke anugami hai, ya anugami ke anugami hai. To hamare liye sabse mahatvapurna mantra hai Srila Prabhupada ka pranam mantra. Inki kripa se hum Hare Krishna mantra ucharan kar sakte. To wo mantra kya hai? Namam.
Yahan par nama om is prakar se kehna hai.
Nama om. Sab kehte hai nama om. Aise kya hona chahiye? Oh, baat yehi hai. Jaise bache school mein sikhte hai, prathamik shiksha yehi hai. Ka. 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 तो जब हम देखते हैं क और मात्रा है, तो का कहना है, क का. तो नमा ओम, नमा ओम या क्या है?
नमा ओम
नहीं,
नमा नहीं है, और नमा ओम तो क्या है कि हम एक अतिरिक्त का उच्चारण करते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है.
तो कैसे कहना है? नामा ओम,
नामा ओम,
ऐसे नामा ओम विष्णु पदाय
नहीं है, पादाय.
ओ क्या है, हमें पुस्तक में देखते हैं. यदि हम नहीं जानते अच्छी तरह, तो हम तो संभोग देख सकते नहीं. Nama Om Vishnu Padaya Nahi.
Padaya Nahi.
To bahut se bhag Padaya kehte.
To samata wo kabhi pustak mein jaake nahi dekhe.
Padaya. Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti.
Kya? Srimati nahi. Srimate.
Srimate. Srimate. Wo shabd hai Srimati nahi?
Srimati nahi hai. Kyunki yahan par Srila Prabhupada ka prana mantra hai, jo ek पुरुष व्यक्तित्व है, इसलिए श्रीमते आएगा.
श्रीमते. अच्छा, श्रीमते भक्ति वेदांत
ब भी नहीं है, भक्ति वेदांत कई बार हम कहते हैं.
भक्ति वेदांत स्वामी ने चेना मैंने,
और इसके पूर्व भी जैसे भूतले
भूतले
दीर्घ है.
भूतले
कई हमारे जो त्रुटियां होती है वो ह्रस्व को हम दीर्घ बना देते हैं, दीर्घ जो वर्ण है उसको हम ह्रस्व बना देते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है।
नमस्ते,
पुनः नमस्ते है,
नमस्ते 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 नमस्ते
नमस्ते
नमस्ते सरस्वती देवी
सारस्वते
सारस्वते देवी, उसका अर्थ क्या है? सारस्वते देवी, वो सरस्वती देवी नहीं, सरस्वती देवी मतलब विद्या और संगीत की अधिष्ठात्रिणी सरस्वती देवी, सारस्वते देवी।
यहाँ श्रील प्रभुपाद के जो गुरुदेव है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके साथ संबंध होने के कारण उन्हें सारस्वत कहा जाता है।
अच्छा, सारस्वत देवी,
यहाँ सारस्वत अर्थात जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जो संबंधित है या उनके शिष्य है।
नमस्ते सारस्वत देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पश्चात्यादेश तारिणे,
पश्चात्य नहीं पाश्चात्य
पाश्चात्य नहीं
पाश्चात्य,
तो इसको मैं लगभग सभी भक्त पाश्चात्य ऐसे कहते हैं लेकिन वो ठीक नहीं है, पाश्चात्य देश चारणे। अच्छा ठीक है,
तो शून्य जो है वो दीर्घ है, शून्यवादी
शून्यवादी,
शून्य शून्य भी नहीं है, शून्य भी नहीं है, स से बोलते हैं शून्यवादी,
शून्य शून्य शून्यवादी
शून्यवादी।
तो आप एक बार दो मंत्र श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र अच्छी तरह बताएं हमको सिखाने के लिए।
नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
एक और बात है, ओ न दंतव्य और न मूर्धन्य
जी,
उसके बारे में
जो तारिणे जिसमें जो ण आता है वो मूर्धन्य ण, संस्कृत भाषा में उसे मूर्धन्य ण कहा जाता है, तो इसमें जो जिह्वा का जो अग्रभाग है वो ऊपर की ओर उसकी गति होती है, हम देख भी सकते हैं ना, so, जब इस प्रकार का कहीं भी लिखा आता है अंग्रेजी में नाक के नीचे एक बिंदु आती है और संस्कृत में देवनागरी स्क्रिप्ट में तो ण लिखा आता है, तो वो जो नम आता न ण आता है तो जिह्वा का जो अग्रभाग ही ऊपर की ओर उसकी गति होगी ण, इस प्रकार से जैसे ये इसी प्रकार के जो वर्ण आते हैं ट ठ ड ढ ण, इन सभी में जिह्वा का जो अग्रभाग ऊपर की ओर उसकी गति होती है ण, और जो दूसरा जो सामान्य रूप से जब हम इसका उच्चारण करते हैं जिसे दंत्य न कहते हैं, दंत्य न अर्थात जे में जिसमें जिह्वा का दातु स्पर्श होता है, प्रायः जो अधो पंक्ति है अध पंक्ति जो है इसके साथ न न न वो दंत्य न है, और ये मूर्धन्य ण न यानी ण, इस प्रकार से उसका उच्चारण।
आजकल सामान्य हिंदी में वो ऐसा नहीं चलते, सब एक ही होते हैं,
भाषा का जो स्तर है वो दुर्दशा को प्राप्त,
कलयुग की प्रगति का एक कारण है सब जो उच्च है सब जो शुद्ध है तो उसका ह्रास होते हैं। तो कीर्तन में हम पहले श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र गाते हैं, उसके पश्चात श्री पंचतत्व मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधा, कैसे लोग
गदाधर
गदाधर गदाधर गदाधार ऐसे कहते हैं, श्री अद्वैत गदाधा
इसमें प्राय हम द को ध बना देते हैं, जिससे हिंदी में इसके बहुत ही हास्यास्पद अर्थ होता है, गदाधर, यानी कि जो गधा को धारण करते हैं। लेकिन यहाँ गदाधर जो भगवान के भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद,
गलत उच्चारण करेंगे तो गदाधर भगवान गदा लेके उसको दंड दे दे नहीं, भगवान भावग्राही है तो, लेकिन यदि हमारा भाव शुद्ध है, हम प्रयास करेंगे उनका शुद्ध नाम अच्छी तरह कहना, यही बात है। गदाधर श्रीवास आदि,
श्रीवास आदि,
श्रीवास आदि,
श्रीवास आदि नहीं है। जो दीर्घ वर्ण है उसका दीर्घ उच्चारण करना, यदि इतना हम ध्यान रखेंगे तो हम त्रुटि नहीं कर पाएंगे। प्राय क्या होता है कि हम जो ह्रस्व वर्ण है उसको हम ज्यादा उसको खींच लेते हैं, और इसमें हम क्योंकि इतना कुशल नहीं है, जो संगीतज्ञ होते हैं वो उसको अच्छी तरह से नाप तोल के बोल पाते हैं, लेकिन हम जब ह्रस्व पर आलाप करने जाते हैं या और थोड़ा खींचना चाहते हैं संगीत की दृष्टि से, तो ह्रस्व का दीर्घ उच्चारण हो जाता है। तो
लगता है ये बहुत कठिन है सब विचार।
इसके लिए सामान्य नियम ये है सामान्य जनता के लिए कि जो दीर्घ दीर्घ वर्ण है उसी को ही खींचे, ह्रस्व वर्ण जो है उस पर यदि
वास्तव में कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, वही बात है। आप जो सब हिंदी भाषी है आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं है, पाश्चात्य देश के भक्तों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि उनकी भाषा जो संस्कृत से बहुत दूर है, लेकिन हिंदी संस्कृत आधारित है नहीं, सब भारतीय भाषा हिंदी गुजराती बंगाली सब संस्कृत से आते हैं, सिद्ध है।
इसमें मुख्य रूप से दुराभ्यास जो होता है, एक एक भाषा का जो दुराभ्यास होता है उसके कारण हम यद्यपि जानते हैं फिर भी वो दोष होता है।
और हिंदी में कुछ संस्कृत शब्द जिसका उच्चारण थोड़ा अलग होते हैं हिंदी में, जैसे संस्कृत में अर्जुन होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं?
अर्जुन,
अर्जुन। और जैसे वो गुरुवाष्टक में मंदिर मार्जना दो, हम सुनते बहुत हिंदी भाषी भक्त मंदिर मार्जना दो कहते हैं, क्योंकि हिंदी में मंदिर कहते हैं और पंजाबी में मंदिर, मंदिर मार्जना। हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र वो ही स्पष्ट है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कभी कभी हम सुनते रमा रमा गाते हैं भक्तों, हरे रमा राम राम हरे हरे, रमा 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 कौन है?
श्री लक्ष्मी देवी,
श्री लक्ष्मी देवी, तो राम राम होने चाहिए। तो कभी कभी कीर्तन में तो छंद के अनुसार वो राम में या कृष्ण में वो अंतिम वर्ण तो दीर्घ होते ऐसे, हरे रामा तो क्या कहना चाहिए?
इसमें समाधान ये है कि जो दीर्घ वर्ण है उसको यदि आप थोड़ा लंबा खींचेंगे तो कोई इतनी हानि नहीं होगी, लेकिन जो ह्रस्व है उसको खींचने से अर्थ अनर्थ हो सकता है, अर्थ उसका विपरीत हो जाता है।
तो ऐसे हरे राम 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 हरे हरे, छोसियाती में वो सुर क्या है? तो सामान्यतः हम गाते हैं
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हाँ वो ही है, हरे रामा हरे राम, बहुत ऐसे छंद जिसमें राम राम रमा रमा हो जाते हैं, जो विचित्र है। तो हम प्रतिदिन मंगल आरती जाते हैं और श्री गोवर्ष्टक कीर्तन करते हैं, Samsara dava nala lidha loka.
यहाँ पर शब्द है दावा नल, लेकिन हम गाने में हम पर्याप्त ध्यान नहीं देते, इसके कारण दावा और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा अवकाश शून्यकार जिस तरह उसके बाद नल कहते हैं, तो ये एक अर्थपूर्ण उच्चारण नहीं है, ये अकारण शब्दों को यहाँ तोड़ा गया है. तो इसमें हम सावधानी रख सकते हैं, जो दीर्घ वर्ण यदि उसको ही हम थोड़ा खींचेंगे तो वो उसमें वो उसका समावेश हो जाएगा, इस प्रकार से भंग करना नहीं पड़ेगा शब्द को. जैसा संसार दावा नलली ढलोका,
दावा नल शब्द का मतलब
दावा नल अर्थात वन में जो आग लगती है.
और संसार दावा नल संसार तो वन में आग बड़ा आग जैसे हो, तो उसका अर्थ है तो संसार दावा उसका क्या मतलब.
संसार की यहाँ पर तुलना की गई दावा नल के साथ.
नहीं नहीं, सो यदि हम वैसे ही गाते हैं संसार दावा नाला
तो अर्थहीन है,
कोई अर्थ नहीं है. संसार दावा नाला,
क्योंकि रामायण में भी वर्णन आता है जब कुश और लव रामायण का उच्चारण करते थे तो यहाँ पे वर्णन आता है कि इतने अर्थ दृष्टि से गाते थे, इतना शुद्ध उच्चारण होता था कि उसको सुनने से ही लोगों को उसको अर्थ समझ में आ जाता था.
अच्छा,
बोले अनेक विद्वानों का इस प्रकार से मंतव्य है कि अर्थपूर्ण दृष्टि से बोलना चाहिए.
संसार दावा नाला लीढ़ा कैसे उच्चारण होते हैं? लीढ़ा
ली दीर्घ है और जो ढ है जैसे पूर्व बता दे अर्णा की जो श्रेणी है ट
तो अच्छा हो, चूंकि हम प्रतिदिन ये सब श्लोक कहते हैं उसका अर्थ समझ रहे. तो लीढ़ा हिंदी में नहीं आता है, उसका अर्थ क्या है?
लीढ़ अर्थात उससे जो प्रभावित
या वो जैसे संसार दावा नाल से जो परेशान मिलते संसार दावा त्राणाय कारण्य
त्राणाय
त्राणाय
त्राणाय कारुण्य
त्राणाय
त्राणाय नहीं
त्राणाय नहीं त्राणाय हिंदी शब्द क्या है? त्राण, वो हिंदी में आते हैं नहीं त्राण परित्राण
परित्राण
त्राण आया.
यहाँ पर भी जो ऋण है वो मूर्धन्य ऋण है, ऋण त्राणाय
त्राणाय
कारुण्य
कारुण्य
इसमें भी मूर्धन्य ऋण है.
घन घनत्वम
घना घनत्व
घना घनत्वम. यदि यदि हम कुछ दिन मंगल आरती में वो सब श्लोक पाठ करके गएंगे तो हम देखेंगे वास्तविक उच्चारण क्या है और इस प्रकार हम अच्छी तरह उच्चारण कर सकते हैं. घना घना घनात्वम घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण
प्राप्तस्य कल्याण
प्राप्तस्य कल्याण प्राप्ति प्राप्त प्राप्त करना और कल्याण ये दो शब्द हिंदी में सामान्य है. तो भक्त क्यों ऐसे गाते हैं प्राप्तस्य कल्याण दुराभ्यास प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. एक्चुअली इट्स ऑल वन सेंटेंस. नो
इस विषय में आरंभ में क्या कर सकते हैं, जो दुराभ्यास है उसको मिटाने के लिए प्रत्येक वर्ण पे ध्यान देते हुए गाएं. संसार दावा नलली ढलोक इस प्रकार से. अभी क्या होता है कि हम शब्द को पढ़ने जाते हैं और शब्द में पढ़ने का हमारा हिंदी का दुराभ्यास है या अन्य किसी सभी भाषाओं का दुराभ्यास है, इसलिए दोष होता है.
तो हमें क्या है? कौन सा पर हमें ध्यान देना है, वो श्लोक का अर्थ या वो हर एक वर्ण का उच्चारण कौन से में?
दोनों ही महत्वपूर्ण है, किंतु अभी यदि हम ध्यान देने जाएंगे अर्थ पर तो अधिक संभावना है कि हम त्रुटि कर सकते हैं। जैसे हम कार संचालन सीखते हैं उसमें सभी ओर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन आरंभ में ब्रेक और सामने ध्यान रखना सबसे पहले सिखाया जाता है। तो अभ्यास से धीरे धीरे वो संभव है, इतना कठिन नहीं है। जैसे अन्य उदाहरण, जैसे हम स्नान करना सीखते हैं स्विमिंग नदी में, तो वो भी कठिन है, लेकिन अभ्यास से वो धीरे धीरे सहज होता है।
महाप्रभु कीर्तन नृत्य,
कीर्तन है
महाप्रभु
और महाप्रभो,
महाप्रभो। अच्छा, ऐसे
शब्द महाप्रभु है, लेकिन यहाँ संस्कृत में उसका भाव है कि जो महाप्रभु के कीर्तन है, कीर्तन नृत्य गीता और उसमें जो मत है,
तो इसमें महा
जैसे गुरु
महाप्रभु नाउन नहीं है। क्या बोलते हैं संस्कृत में नाउन?
नाम।
इंग्लिश में नाउन बोलते हैं,
नाम कहते
हैं। इट्स पोजेसिव महाप्रभु।
हाँ,
कीर्तन।
तो जैसे वंदे गुरो हो श्री चरणारविंदम, जो गुरु के श्री चरणारविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, वैसे महाप्रभो हो कीर्तन नृत्य गीत, महाप्रभु के कीर्तन नृत्य गीत में।
हाँ, महाप्रभो और वंदे गुरो, वो तो नहीं बोल, वंदे गुरो कैसे कहना वो महा वंदे गुरो ऐसे कहना या गुरो हो या गुरो?
नियम के अनुसार गुरो हो इस प्रकार से भी कह सकते हैं, लेकिन गान में वो इतना सुविधाजनक नहीं होगा, तो उसके लिए विकल्प है। तो हम विसर्ग के पश्चात जब ये श आता है, तीन प्रकार के स होते हैं।
थोड़ा कठिन है ना?
अधिक नियम नहीं है इसमें। यदि हम विसर्ग के पश्चात, इसमें विसर्ग के नियम जाने की जरूरत है। विसर्ग के पश्चात यदि दंत्य स है, जैसे सरस्वती में जो स आता है, तो हम विसर्ग के स्थान पर उस स का उच्चारण कर सकते हैं। और विसर्ग के पश्चात यदि शिवा वो वाला श है, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प में हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। और यदि मूर्धन्य श है, जैसे कृष्ण, उसमें जो श आता है, तो वो वाला दिश है, तो हम विसर्ग स्थान पर उसका उच्चारण कर सकते हैं। इसका
सामान्य भक्तों के लिए क्या उपदेश है? क्योंकि ये हम यहाँ सुनने से भक्तों का मन निराश हो जाएगा।
इसमें हम इतना ध्यान रख सकते हैं कि गुरुओं के बाद श्री है, जिसमें श्री जी वाला
वंदे गुरु,
वंदे गुरु श्री चरणारविंद,
वंदे गुरु, उसको निरव।
एक विकल्प ये कि हम विसर्ग का उच्चारण न करें, अधिक कठिनाई का अनुभव हो रहा है। यदि कोई नियम याद रख सकते कम से कम इसके लिए,
नियम सीखने के लिए आपके पास, आपके चरण के पास आना चाहिए सीखने के लिए। तो महाप्रभ महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माध्यन मनसो रसेना रोमांच कंपा शूतर, ये श्लोक में ज्यादा सामान्य
सामान्य रूप से इसमें जिस प्रकार से वो गाया जाता है उससे वो अर्थपूर्ण नहीं निकलता, बहुत ही एक विचित्र सी ध्वनि उत्पन्न होती है। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, शब्द ऐसे नहीं बनाए वहाँ पर, रोमांच कंपा श्रु तरंग भाजो, जो महाप्रभु के कीर्तन नृत्य
कंपा श्रु में वो उसके बीच में कटना नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, फिर उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता
नहीं। और उसमें सामान्य रूप से जो मैंने देखा है कि रोमांच कंपाश्रु कहने जाते भक्त, लेकिन फिर कुछ जल्दी से ही कह देते हैं रोमांच कंपाश्रुत रंग भाजो। सो इसमें कोई शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है, जो दीर्घ वर्ण है कंपा तो उसको थोड़ा खींच के फिर उसका समावेश हो सकता है। यथा रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, तो इसमें कहीं पर भी इतनी हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्राय भक्त केवल एक अंश ग्रहण करते हैं कि बस कंपाश्रु कहना है तो किसी भी प्रकार से इसको कह देना है। सो इसमें थोड़ा सा जो दीर्घ वर्ण है उसको थोड़ा खींचेंगे तो उसका अर्थपूर्ण दृष्टि से उच्चारण,
वो सबसे बड़ी बात है। तो दीर्घ को ह्रस्व कहते हैं और ह्रस्व को दीर्घ। श्री विग्रह राधन हाँ श्रृंगार थन वो उसके बारे में बताया ना, मंदिर मार्जना,
मंदिर मार्जना। यहाँ पर भी जो साधारण रूप से तन मंदिर ऐसा भी कहते हैं और तन मंदिर मार्जना दो, अनेक प्रकार से वो उसका अनुचित उच्चारण करते हैं। तो इसमें तन यहाँ पे जो शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, श्री विग्रह के संदर्भ में है। तो तन मंदिर मार्जनादौ, तो इसमें हम थोड़ा धैर्य रख सकते हैं जब उच्चारण करने में। जैसा श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, मंदिर मार्जनादौ तन कहकर थोड़ा सा अवकाश दे सकते हैं। तो मंदिर फिर धीरे से उसका उच्चारण हो सकता है, हम मंदिर को उसका समावेश करने
के लिए बीच में है, वो गायक जो है तो कुछ श्वास लेना चाहते हैं लेकिन अभ्यास करना चाहिए तो उचित स्थान पर श्वास लेना। मार्जनादो युक्तस्य ऐसा चलेगा
श्री विश्वनाथ चक्री आपके द्वारा तो नहीं चला है।
युक्तस्य भक्तांश्चनयन्यथोपि,
इसमें जो रचनाकार है उनकी रचना का ही अनादर। युक्तस्य शब्द है उक्तस्य, यद्यपि उक्तस्य यह शब्द बाद में आता है गुरुष्टकम में।
उसके पश्चात चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो,
इसी में गुरु महाराज जो युक्तस्य भक्तांश्च नियंजितोपि, इसमें भी सामान्य रूप से त्रुटि करते हैं। युक्तस्य भक्तांश्च नियंजितोपि,
युक्तस्य भक्तांश्च नियंजितो अपि ऐसे कहते हैं,
वो भी है लेकिन भक्तांश्च नियंजितोपि इस प्रकार से कहना चाहिए। प्राय रूप से सुना जाता है युक्तस्य भक्तांश्च नियंजितो,
शब्द
इसमें जहां पर उनको उसका विभाजन करना चाहिए वहां पे नहीं करते, इससे एक अर्थपूर्ण ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। युक्तस्य भक्तांश यानी कि स्वयं युक्त है और भक्तांश्च नियोजितोपि, तो भक्तांश्च और फिर नियोजितोपि शब्द कहना अधिक उचित होगा।
और कभी कभी कुछ भक्त ऐसे कहते नियोजितो अपि,
तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार जो एक वहां पर यद्यपि अपि ये शब्द है किंतु अ का वहां पे लोप हो चुका है, इसलिए वहां पर हम
तो
देखेंगे
लेग में नहीं,
हाँ उसमें लिखने में नहीं आएगा लेकिन एक अवग्रह चिन्ह करके एक आता है,
उसका मतलब होना चाहिए लेकिन व्याकरण के अनुसार नहीं होना चाहिए, नहीं
तो उसका उच्चारण नहीं करना। संस्कृत में जो नहीं है उसका उच्चारण नहीं करना, जो है उसका उच्चारण करना है।
और चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो,
चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, चतुर्विधा नहीं है चतुर्विधा है। हम इसमें केवल ध्यान रखने का ही विषय है, कोई कठिन नहीं है। चतुर्विधा नहीं है, यदि भी गाने में सुविधाजनक लगता है चतुर्विधा श्री, लेकिन चतुर्विधा जहाँ पर वो ह्रस्व है,
वो ही बात है, ह्रस्व तो ह्रस्व होना चाहिए और दीर्घ तो दीर्घ दीर्घ होने चाहिए।
दीर्घ का एक बार थोड़ा सा यदि हम अधिक खींच भी लेंगे तो इतना दोष नहीं होगा, अर्थ की दृष्टि से कोई अधिक अंतर नहीं पड़ेगा।
तो चतुर्विध श्री भागवत प्रसाद, लेकिन अष्टम श्लोक में यस प्रसाद भगवत प्रसादो, तो यहाँ पर तो प्रसाद एक श्लोक में प्रसाद दूसरे प्रसादो, ऐसे क्यों?
इसमें संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार, संधि के नियम अनुसार इस प्रकार से स्थिति है, भगवत तो प्रसाद।
समझने के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, तो यदि ज्ञान नहीं है तो फिर भी तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रचना करते हैं तो उसके अनुसार हमें करना चाहिए, ज्ञानी या अज्ञानी होना। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वान तृप्तन स्वाद्वान नहीं है, स्वाद्वान तृप्तन
तृप्तान शब्द है। स्वादु स्वादु अन्नम, उसका जब संधि, उसकी जब संधि होती है स्वाद्वन्न
तृप्तान,
स्वाद्वन्न तृप्तान।
हरि भक्त संगन,
हरि नहीं है, हरि भक्त संघान,
संघान। कृत्वैव तृप्तिं भजतो सदैव,
भजता सदैव, भ का उच्चारण।
कृत्वैव तृप्तिं भजतो सदैव,
इसमें कृतवैव कृतवैव कहते हैं।
श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम कहते हैं, वो हिंदी भाषी वाला ऐसे गुण रूप नाम नाम गुण रूप नाम नाम
गुण रूप
प्रतीक्षणास्वा दानलोलोपस्य,
इसमें भी थोड़ा प्रयत्न की आवश्यकता है। प्रतीक्षणास्वादनलोलोपस्य,
उसके बीच में काटना नहीं चाहिए,
काटना नहीं चाहिए।
एक बात है, यदि वो हम उसका ये सभी श्लोक का अर्थ समझते तो हम मुग्ध होंगे, वो बहुत सुंदर बहुत मधुर है। श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षा, ये सब एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या बोलते हैं,
वाक्य,
एक वाक्य है। प्रति हम किस प्रकार गुरु के चरणारविंद पर प्रणति करते हैं, उस प्रकार गुरु जो सदैव अति उत्साही है, श्री राधिका और माधव, श्री राधिका माधव और उनके अपार गुण रूप और लीला का माधुर्य आस्वादन करने के लिए जो सदैव अति उत्साही है, उस प्रकार गुरु के चरण पर हम वंदना करते हैं। प्रतीक्षण में
इसमें एक दोष है, लीला
लीला लीला
लीला कहते हैं, लीला है,
लीला लीला।
श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला, हिंदी के हिंदी का जो अभ्यास है, लीला प्रकार से कहते हैं,
लीला लीला गुण रूप सदैव प्रतीक्षण में वो मधुर स्वाद जो श्री राधिका और माधव के गुण रूप नाम और लीला में है, उसको स्वाद करने में प्रतीक्षण में लोलोप है, लालच कहते हैं, लोभ कहते हैं, उस प्रकार गुरु के श्री चरण में हम वंदना करते हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र युक्तस्तथा,
इसके पूर्व निकुंज योनि
ओ निकुंज योनि ये भी बहुत मधुर है निकुंज योनि निकुंज योनो राति केली सिद्धाय यायाले भय यायाले भय युक्तिर अपेक्षणीय तत्राति दाक्षाद अति वल्लभस्य
तत्राति दाक्षाद
अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है और मधुर अर्थ है श्लोक का निकुंज योनो रति केली सिद्धाय किस प्रकार गुरु के चरण में हम वंदना करते निकुंज योनो ये राधा और कृष्ण जो वृंदावन के निकुंजों में लीला विलास करते हैं निकुंज राति विलास का मतलब वो अप्रपंचिक शुद्ध स्त्री पुरुष आकर्षण के अनुसार राति विलास प्रेम विलास राति वो सिद्धि जो सिद्धि मिली जो सिद्ध है जो पूर्ण है श्री श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं में जो सिद्ध है सिद्ध याली भी युक्त और सब कुछ जो गोपियां और सहकारी छोटी गोपियां मंजरी सब व्यवस्था करते हैं श्री श्री राधा कृष्ण की लीला में जो उसमें वो सेवा में अति निपुण है और इसलिए राधा कृष्ण के बहुत ही प्रिय है उस प्रकार गुरु के श्री चरण पर मैं वंदना करता हूँ ये इसका अर्थ है और उसके पश्चात साक्षात
इसके इसी में निकुंज यूनो शब्द है
हाँ निकुंज यूनो
उसका निकुंज यूनो जैसे अंग्रेजी में से कहते यूनो इस प्रकार से उसका उच्चारण सो वो निकुंज यूनो
निकुंज यूनो ऐसा नहीं होना निकुंज यूनो राधा और कृष्ण वृंदावन के कुंज निकुंजों में जो राति विलास कहते हैं साक्षाद धरित्वेन समस्त शास्त्र
युक्तस्तथा
तथा भाव्यत एव सभ्य भाव्यत या
भाव्यत एव सभ्य भाव्यत नहीं भाव्यत
किंतु प्रभु या एव
किंतु प्रभोर यह
प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद नगति कथोपि
यस्या प्रसादान यहाँ पर आरंभ में बताया गया कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जिनके प्रसाद से जिनकी कृपा से भगवत प्रसाद भगवत कृपा प्राप्त होती है
किंतु पहले पंक्ति में यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद तो दूसरी पंक्ति में अलग होते क्यों यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद क्यों
क्योंकि वहाँ पर प्रसाद के विषय में चर्चा हुई है कि जिनके प्रसाद से भगवत प्रसाद प्राप्त होता है या भगवत कृपा प्राप्त होती है किंतु जिनसे जिनके अप्रसाद से यस्या प्रसाद यस्य अप्रसादा दोनों को मिला के संधि होकर यस्या प्रसादान न गति कुतो भी उनकी यदि कृपा प्राप्त नहीं है तो कोई गति नहीं है
तो यदि हम यस्य प्रसाद नगति कथोपि कहेंगे उसका अर्थ क्या है गुरु की कृपा से
कोई गति नहीं प्राप्त
कोई आशा नहीं है गुरु की कृपा से हमारा पूरा सत्यानाश होता है तो इसलिए अच्छी तरह उच्चारण करना जरूरत है। यस्या प्रसाद नगति कथोपि, फिर तीसरा पंक्ति ध्यान
ध्यायन
ध्यायन ध्यायन,
इसमें ध्यान के विषय में
ध्यायन ध्यायन स्तुवंस तस्य ध्यायन स्तुवंस तस्य यशस्त्री श्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ऐसा है
यशस्त्री संध्यम। प्राय हम इस प्रकार से गाते ध्यायन स्तुवंस तस्य यशस्त्री संध्यम, यशस्त्री संध्यम इस प्रकार से नहीं है, यशस्त्री संध्यम। यहाँ पर जो शब्दों का जो भंग है विपरीत स्थान पे किया गया है, यशस्त्री संध्या, और त्रि दीर्घ नहीं है, त्रि ह्रस्व है।
वंदे गुरु श्री चरणारविंद, यही दिवस का तीसरा संध्या आ गया है, तो यहाँ पर ये सत्र हम समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद, और आशा है कल भी ये विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।